नमस्कार भारत, 8 नवंबर दिन मंगलवार, मैं हूं संदीप सोनी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार अभियान के आखिरी दिन दोनों उम्मीदवारों ने दिन रात एक किया।
This election is basically between division and unity in our country.
If we win tomorrow, we will be able to make America great again.
अमेरिका में इस बार मुसलमान मतदाताओं में दिख रहा है काफी जोश।
हम लोग इनको समझा रहे हैं कि इलेक्शन बहुत क्लोज है और ये इलेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी की, इट्स द बिगेस्ट इलेक्शन फॉर इन द हिस्ट्री।
दिल्ली के दो प्रोफेसरों पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, हरिता कांडपाल से। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन वोटरों को रिझाने के लिए आखिरी जोर आजमाइश में लगे हैं। फ्लोरिडा में ट्रंप ने अपनी रैली में कहा कि वोटरों के लिए भ्रष्ट राजनेताओं को खारिज करने का ये आखिरी मौका है। वहीं मिशिगन में हिलरी क्लिंटन ने लोगों से आशावान, समावेशी और बड़े दिल वाले अमरीका के लिए वोट करने की अपील की है। अमेरिका में संघीय जांच एजेंसी FBI से डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को ईमेल लीक मामले में क्लीन चिट मिलने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में तेजी देखी गई। न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट में शेयर बाजार में 2% की बढ़ोतरी हुई और इससे पहले यूरोपीय और एशियाई बाजारों में भी तेजी देखी गई। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस ने सिलसिलेवार सांप्रदायिक हत्याओं के लिए कई लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक शिया और सुन्नी ठिकानों पर छापेमारी के दौरान इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि गिरफ्तार किए गए लोगों में मशहूर गायक अमजद साबरी के हत्यारे भी शामिल हैं। इस साल जून में अमजद साबरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस का कहना है कि ये दोनों तालिबान से जुड़े लश्कर ए जांगवी गुट से हैं। सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने ये बताया।
दो लोग हमने पकड़े हैं जिनका मैंने बताया, जहाँ पे वेपन्स मिले और ये उधर थे। इसके अलावा और लोग अगर इनके ग्रुप में होंगे तो वो इन्वेस्टिगेशन जारी हैं, लेकिन ग्रुप को तोड़ दिया है हमने। और ये दो लोग जो थे ना, ये प्राइम जो मुझे इतलात दी गई, जो इन्वेस्टिगेशन हुई, जो इन्वेस्टिगेशन फिर बाकी इदारों ने भी वेरीफाई किए हैं, ये दो लोग ही तकरीबन सब केसेस में।
ये थे सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। इराकी सेना ने हमाम अल अलील शहर में सिर कटी लाशों की एक सामूहिक कब्र ढूंढने का दावा किया है। मोसुल के दक्षिण में स्थित ये शहर दो दिन पहले तक चरमपंथी संगठन इस्लामिक स्टेट के कब्जे में था। इराकी सेना ने कहा है कि ये सामूहिक कब्र IS के क्रूर अपराधों का सबूत है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने अमरीका से हजारों असॉल्ट राइफलें खरीदने के सौदे को रद्द कर दिया है। डुटेर्टे ने कहा कि फिलीपींस कम कीमतों पर कहीं और से ये राइफलें खरीदेगा। 26,000 से ज्यादा अमरीकी राइफलें फिलीपींस की पुलिस के लिए मंगाई जानी थी। अमरीका और फिलीपींस लंबे समय से सहयोगी रहे, लेकिन डुटेर्टे के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के बीच दूरियां बढ़ गई हैं। कुछ रिपोर्टों के मुताबिक अमरीकी सरकार फिलीपींस में गैरकानूनी ड्रग कारोबार को लेकर कारोबार पर हिंसक कार्रवाई से चिंतित है और लाइसेंस के सौदे को रद्द करने के बारे में सोच रही थी। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत में सभी श्रोताओं को संदीप सोनी का नमस्कार। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर और अपने मोबाइल फोन पर भी सुन रहे हैं। नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण। दुनिया भर की नज़र इन दिनों अमेरिका पर लगी है, जिसे जल्द ही नया राष्ट्रपति मिलने वाला है। अब से लगभग 10 घंटे बाद अमेरिकी मतदाता वोट डालेंगे। उससे पहले चुनाव का प्रचार अभियान अपने चरम पर आकर संपन्न हो रहा है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप।
I'm asking you to dream big because with your vote we are just one day away from the change you've been waiting for your entire life. Because if we win tomorrow, we will be able to make America great again.
रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कह रहे थे, मैं आपसे बड़ा सपना देखने के लिए कह रहा हूं क्योंकि आपके पास वोट के साथ हम बस एक दिन दूर हैं और फिर वो परिवर्तन आएगा जिसका हमें इंतजार है। यदि हम जीते तो अमरीका को दोबारा महान बना देंगे। इसी तरह डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन ने अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा,
Are you ready to vote tomorrow, Michigan? This election is basically between division and unity in our country.
डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन अमरीकी लोगों से कह रही थीं, क्या आप इस मतदान के लिए तैयार हैं? ये चुनाव दरअसल हमारे देश में विभाजन और एकता के बीच है और मतदान करते समय उन्हें इस बात का ख्याल रखना है। और इसके साथ ही अमरीका से कार्यक्रम में बीबीसी हिंदी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय शामिल हो रहे हैं। ब्रजेश, बहुत स्वागत है आपका। आपसे यहाँ ये जानना चाहेंगे, जैसा कि कल खबर आई थी, अमरीकी जाँच एजेंसी FBI ने निजी ईमेल सर्वर मामले में हिलरी क्लिंटन को क्लीन चिट दे दी है और आज खबर ये आई है कि हिलरी क्लिंटन को क्लीन चिट मिलने के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में बढ़त देखने को मिल रही है। क्या वजह है इसकी, क्या लगता है आपको?
देखिए, आप जैसा कि जानते हैं संदीप, शेयर मार्केट्स जो है एक तरह के सेंटिमेंट्स पर काम करते हैं और कोई भी किसी भी तरह की अनिश्चितता जो होती है, अनसर्टेनिटी जो होती है, वो शेयर मार्केट को बहुत पसंद नहीं आता है। तो हिलरी क्लिंटन क्या है, उनकी नीतियां किस तरह की हैं, ये शेयर मार्केट को मालूम है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां क्या होंगी, इसका अंदाजा अभी नहीं है उन्हें। वो एक अननोन फैक्टर की तरह आए हैं इस चुनाव में। पहले कभी भी किसी तरह का सरकारी ओहदा नहीं संभाला है उन्होंने। एक बिजनेसमैन के तौर पर सफल रहे हैं, लेकिन किस तरह से सरकार चलाना है, प्रशासन चलाना है, इस बारे में वो किस तरह से चलाएंगे, किसी तरह की जानकारी नहीं है। तो वो जो एक अनसर्टेनिटी है, वो शेयर मार्केट को नहीं पसंद आती है। और जब तक FBI की तलवार लटकी हुई थी तो लग रहा था कि कहीं हिलरी क्लिंटन को आखिरी मिनट तक कहीं कुछ ऐसा हो कि शायद वो नहीं, माफ कीजिएगा, कि चुनाव में आगे बढ़ पाए और उनके जो चांसेस हैं खत्म हो जाए। तो शेयर मार्केट में काफी एक तरह का, जब पहली बार 28 तारीख को जब खबर आई कि ईमेल्स की दोबारा से जांच हो रही है, तो शेयर मार्केट लुढ़क गए थे। और फिर जब दोबारा से आया है तो अमेरिका समेत दुनिया के कई बाजारों में उछाल आया है। तो वही वजह इसमें बताया जा रहा है जानकारों के अनुसार।
ब्रजेश, जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण के नतीजों में ट्रंप और हिलरी दोनों ही हिचकोले खाते रहे हैं। सर्वेक्षणों में कभी ट्रंप को तो कभी हिलरी को हमने देखा है बढ़त मिल रही है, और वहीं न्यूयॉर्क में ट्रंप और हिलरी दोनों की टोपियां बिक रही हैं। क्या लग रहा है आपको, किसकी टोपियां ज्यादा बिकी हैं इस बार, ट्रंप की या हिलरी की?
एक जगह एक दुकानदार से मेरी बात हुई थी, वो बता रहे थे कि ट्रंप की टोपियां उनकी कल ज्यादा बिक रही थी, बल्कि वो कह रहे थे कि 80% टोपियां जो है सिर्फ ट्रंप की बिकी है, 20% हिलरी की। लेकिन ये किसी तरह, और उनकी जो सोच थी वो ये कि ये दिखाता है कि सर्वेक्षण कुछ भी कहे, एक जमीन पर जो हालात है, एक अंडर करेंट है जो ट्रंप के साथ है। लेकिन जो ये बिक्री है, ये किसी तरह का मानक नहीं है कि इसको देखकर कि आप कह सके चुनाव का अंदाजा लगाएं। लेकिन हाँ, एक छोटा सा आप कह सकते हैं कि फ्लेवर देता है चुनाव का। जहां तक सर्वेक्षणों की बात है, आपने सही कहा, हिचकोले खाते रहे हैं। और अभी जो सभी सर्वेक्षणों का निचोड़ आया है एक तरह से, उसमें करीब 3 से 4 पॉइंट से हिलरी क्लिंटन आगे चल रही है। लेकिन ये सर्वेक्षण है, जमीन पर हालात क्या होंगे ये मंगलवार को ही जब वोटर बाहर निकलेंगे उन्हीं से पता चलेगा। लगभग 4 करोड़ वोटर अब तक वोट डाल चुके हैं उन राज्यों में जहां अर्ली वोटिंग का प्रावधान है, और वहां पर एक थोड़ा अंदाजा मिलता है कि जहां हिस्पैनिक वोट्स हैं, जो लातिनी अमेरिकी वोट्स हैं, उनकी तादाद पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ी है, तो वहां हिलरी क्लिंटन का पलड़ा भारी दिख रहा है। जहां पर नए गोरे वोटरों की तादाद काफी बढ़ी है, वहां ट्रंप का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर है असली जो मुकाबला है वो तो बस सबसे बस 9 से 10 घंटे दूर है।
बहुत शुक्रिया, ये थे बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय अमेरिका से। और अब बात अमेरिका में बसे मुसलमान मतदाताओं की। इस बार के चुनाव में मुसलमान मतदाताओं में काफ़ी जोश देखा जा रहा है और चुनाव से पहले कई संस्थाएं उन्हें भारी संख्या में वोट डालने के लिए प्रेरित कर रही हैं। न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
अमरीका में रहने वाले बहुत से मुसलमानों में इस बार के चुनाव में ये जोश खासकर इसलिए भी है क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के मुसलमानों से संबंधित कुछ बयानों से बहुत से मुस्लिम अमरीकी बेहद नाराज हैं और साथ ही वो विचलित भी हैं। बहुत से अमरीकी मुसलमानों को लगता है कि उनको खासकर निशाना बनाया जा रहा है। अमरीका में करीब 33 लाख मुसलमान रहते हैं और एक ताज़ा सर्वेक्षण के अनुसार अमरीका में 86% मुसलमान अमरीकी वोट देने का इरादा रखते हैं। मुस्लिम वोटरों में 67% डेमोक्रेटिक पार्टी के हिमायती हैं और सिर्फ 6% रिपब्लिकन पार्टी को हिमायत देते हैं, जबकि 18% मुस्लिम वोटर निर्दलीय बताए जाते हैं। इसीलिए न्यूयॉर्क जैसे कई शहरों में मुस्लिम समुदाय की विभिन्न संस्थाएं वोटिंग के लिए प्रेरित करने के मकसद से विशेष कैंप आयोजित कर रही हैं। फोन बैंकिंग के इन कैंपों में वॉलंटियर चुनाव के लिहाज से अहम प्रांतों में फोन करके खासकर मुस्लिम वोटरों से कह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में वोट डालने जरूर निकलें। न्यूयॉर्क की एक गैर सरकारी संस्था अरब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क में भी ऐसे ही कार्यक्रम में 20 वॉलंटियर मुस्लिम वोटरों को फोन करके जानकारी देने में व्यस्त हैं।
Great. You know, thank you so much. It's such an important election. We're committed to making everybody's voice heard. Have a great day.
Is Miriam available?
अरब अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूयॉर्क में आयोजित फोन बैंकिंग कार्यक्रम के एक आयोजक अली नजमी कहते हैं,
फोन बैंकिंग हो रही है, वी हैव अबाउट 20 वॉलंटियर्स हियर, हम लोग सब मुसलमान को फोन कर रहे हैं अभी इन स्विंग स्टेट्स, स्टेट्स दैट आर वेरी क्लोज, फ्लोरिडा, अभी हम लोग सब फ्लोरिडा को कॉल कर रहे हैं, सो वी आर, यू नो, द इलेक्शंस वेरी क्लोज इन फ्लोरिडा, वी आर होपिंग दैट आवर कम्युनिटी विल कम आउट इंशाल्लाह एंड वोट इन हाई नंबर्स, सो वी आर कॉलिंग एवरीबॉडी रिमाइंडिंग देम टू वोट ऑन नवंबर 8th। हम लोग इनको समझा रहे हैं कि इलेक्शन बहुत क्लोज है और ये इलेक्शन मुस्लिम कम्युनिटी, इट्स द बिगेस्ट इलेक्शन इन द हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन अमेरिका, पीपल आर गोना वोट, इट्स गोना बी द हाईएस्ट टर्नआउट इन आवर कम्युनिटी।
फ्लोरिडा प्रांत में चुनाव में हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर है। एक सर्वेक्षण के अनुसार फ्लोरिडा में हिलरी क्लिंटन को 49% वोटरों की हिमायत हासिल है और डोनाल्ड ट्रंप को 47% वोटर हिमायत दे रहे हैं। फ्लोरिडा के अलावा पेंसिल्वेनिया, नेवादा, ओहायो जैसी अहम प्रांतों में भी मुस्लिम वोटरों को भारी संख्या में वोट डालकर चुनावी नतीजों में अपना असर दिखाने की अपील की जा रही है। इन अहम प्रांतों में रजिस्टर्ड मुस्लिम वोटरों की सूची लेकर बैठे ये वॉलंटियर वोटरों को उनके क्षेत्र में पोलिंग स्टेशन का पता बता रहे हैं, उनके इलाके में वोटिंग का समय बता रहे हैं, यहां तक कि वोटर अपने पोलिंग स्टेशन कैसे पहुंचे इसकी भी जानकारी दी जा रही है। कई मुस्लिम संस्थाओं ने पोलिंग के दिन चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी के बारे में सूचित करने के लिए विशेष फोन नंबर भी जारी किए हैं। खासकर अहम प्रांतों में मुस्लिम वोटरों से कहा जा रहा है कि उन्हें अगर वोट डालने में परेशानी हो रही है फोन के जरिए भी संपर्क करें। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलो हर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलो हर्ट्ज पर।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे हैं आप संदीप सोनी के साथ। आज है 8 नवंबर, दिन मंगलवार। कार्यक्रम में आगे सुनेंगे आप समाचार पत्रों की सुर्खियां और खेल की खबरें, लेकिन पहले एक खबर छत्तीसगढ़ से, जहां दिल्ली के दो प्रोफेसर्स पर छह लोगों समेत एक ग्रामीण की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया है। क्या है ये पूरा मामला, बता रहे हैं रायपुर से आलोक पुतुल।
इस साल मई में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और उनके साथियों ने जब से बस्तर के सौतनार, नामा और कुमाकोलिंग गांव का दौरा किया था, उसके बाद से ही उनके खिलाफ एक के बाद एक शिकायतों का दौर शुरू हो गया था। माओवादियों का विरोध करने के लिए पुलिस संरक्षण में टंगिया समूह बनाने वाले नामा गांव के सामनाथ बघेल समेत दूसरे ग्रामीणों ने कथित रूप से शिकायत दर्ज कराई थी कि नंदिनी सुंदर और उनके साथियों ने ग्रामीणों को पुलिस के खिलाफ भड़काया और माओवादियों का साथ देने के लिए ग्रामीणों को उकसाया। शुक्रवार को संदिग्ध माओवादियों ने सामनाथ बघेल की हत्या कर दी। अब इस हत्या के मामले में नया मोड़ आया है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार बघेल की पत्नी की शिकायत पर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, जेएनयू की प्रोफेसर अर्चना प्रसाद, सीपीएम नेता संजय पराते समेत 6 लोगों के खिलाफ हत्या और हत्या का नेतृत्व करने समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता संजय पराते का कहना है कि पुलिस ग्रामीणों की सुरक्षा में नाकाम रही है और जो लोग बस्तर में पुलिस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं उन्हें ही निशाना बना रही है। संजय पराते कहते हैं,
सरकार वहाँ पर पुलिस कैंप खोलने के लिए तैयार नहीं है और लोग जब सुरक्षा चाहते हैं तो सुरक्षा खुद सरकार नहीं दे रही है। वहाँ जो तंगे गैंग के जो लीडर थे उनकी हत्या नक्सलाइटों ने किया है, जिन नक्सलाइटों ने उनकी हत्या किया है उन पर केस दायर करने के बजाय, उन अपराधियों को पकड़ने के बजाय दूसरे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो बस्तर की अस्मिता और आदिवासियों के हितों के लिए लड़ रहे हैं।
संजय पराते का कहना है कि सारा मामला बस्तर की प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जे से जुड़ा हुआ है।
देखिए, ये पूरी तरीके से जो है फर्जी केस गढ़ा जा रहा है। जिस तरीके से ये सरकार तानाशाही पूर्ण रुख अख्तियार कर रही है और लोगों के जनवादी अधिकारों को कुचलना चाह रही है और बस्तर की प्राकृतिक संपदा को जो है कारपोरेट लूट के लिए खोलना चाह रही है, उसकी ये परिणति है।
हमने इस बारे में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और JNU के प्रोफेसर अर्चना प्रसाद से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन हमें उनका पक्ष नहीं मिल पाया। नंदिनी सुंदर ने बस्तर के आदिवासियों से जुड़े कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी लगाई हैं। नंदिनी सुंदर की याचिका पर ही सरकार के संरक्षण में कथित रूप से माओवादियों के खिलाफ चलने वाले हथियारबंद आंदोलन सलवाजुड़ुम को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करने का निर्देश दिया था। छत्तीसगढ़ के कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के समूह छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला का कहना है कि पुलिस ने फर्जी तरीके से प्रोफेसर नंदिनी सुंदर और दूसरे लोगों पर मामला दर्ज किया है।
बस्तर के अंदर आज उन तमाम संवैधानिक अधिकारों को, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, लोकतांत्रिक मूल्यों को ही खत्म कर दिया गया है।
सामाजिक संगठनों की मांग पर सरकार किस हद तक हस्तक्षेप करेगी यह तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन पुलिस के लिए इस पूरे मामले की जांच से लेकर सबूत इकट्ठा करने तक का काम किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बस्तर पुलिस की कार्रवाइयां संदेह के दायरे में रही हैं और अधिकांश मामले झूठे साबित होते रहे हैं। आलोक पुतुल, BBC छत्तीसगढ़।
और अब बात दिल्ली की, जहां पिछले कई दिनों से छाए धुंध के बादल कुछ कुछ छटते नजर आ रहे हैं, हालांकि अभी भी प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान से नीचे नहीं आया है। इस मामले में सेंटर फॉर साइंस की निदेशक सुनीता नारायण की एक जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने वाली है। दिल्ली में प्रदूषण और इस जनहित याचिका से जुड़े मुद्दे पर हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने सुनीता नारायण से बात की।
आज एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है दिल्ली के अंदर। मुझे लगता है हम सालों से चेतावनी दे रहे हैं कि बहुत कुछ करना पड़ेगा प्रदूषण को कम करने के लिए। हम लोगों ने जो कदम उठाने चाहिए थे नहीं उठाए, और जो अब आज के हालात है उसमें पहले ही दिल्ली के अंदर प्रदूषण काफी था। उसके ऊपर आपने दिवाली के पटाखे बजाए, उसके ऊपर जो पंजाब और हरियाणा के किसान के पास कोई विकल्प नहीं है कि वो अपनी जो धान की खेती के बाद अगर वो चलाते हैं, खेत के ऊपर आग लगाते हैं, उससे भयानक आग उठी है, और उसके ऊपर सर्दी का समय है और बिल्कुल हवा नहीं है। तो इन चारों कारणों से आज दिल्ली के अंदर जो हवा है वो जहर है। बहुत कुछ करने की जरूरत है।
केंद्र सरकार का कहना है कि हम कोई ब्लेम गेम ना करें, बाकी सरकारें एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही हैं। सरकारें जो आज कर रही हैं, क्या उन्होंने अपने कदम उठाने में देरी की?
बिल्कुल देरी की, और जो कदम उठाने चाहिए थे केंद्र की सरकार को कि पूरी NCR के अंदर जो सरकारें हैं उनके साथ मिलजुल के काम करे और सख्ती से काम करे, दूसरी तरफ से दिल्ली की सरकार को अपने यहाँ जो कदम उठाने चाहिए थे डस्ट कंट्रोल के लिए वो उनने बिल्कुल नहीं करे। ये तूतू मेमे का गेम नहीं होना चाहिए। जिम्मेवारी सबकी है और सबने नहीं निभाई, मगर एक अच्छी चीज है कि अब सब लोग कह रहे हैं कि करेंगे।
अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं, जहां आपकी याचिका पर सुनवाई होनी है। क्या उम्मीद आपको है?
देखिए, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिका रखी है वो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे डायरेक्शंस दिए हैं, मगर सवाल यही बनता है कि उन डायरेक्शंस के ऊपर इतना इन्फोर्समेंट नहीं हुआ है कुछ डायरेक्शंस के ऊपर। तो उम्मीद यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज के ऊपर निगरानी रखेगी, सरकारों से जवाबदेही मांगेगी, तो कुछ हद तक एक्शन होगा, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है।
दिल्ली में प्रदूषण की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी एक जनहित याचिका पर सुनवाई। ये थी पर्यावरणविद सुनीता नारायण।
BBC हिंदी रेडियो पर बुधवार को दुनिया जहां,
अंतर्राष्ट्रीय खबरों के पीछे का सच,
शुक्रवार को इतिहास की परतें खोलती विवेचना,
और शनिवार को आपकी आवाज इंडिया बोल।
और कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों की सुर्खियां जानने का। दिल्ली से छपने वाले अखबार आज क्या कुछ कह रहे हैं बताने के लिए तमाम अखबारों के साथ हरिता कांडपाल स्टूडियो में आ चुकी हैं।
जी, दिल्ली के अखबारों में अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा जोरों पर है। सिर्फ एक रात का फासला और अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति कौन होंगे इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन इससे पहले बात दिल्ली के प्रदूषण की, जैसे कि अभी हम सुनीता नारायण से बातचीत सुन रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस ने इसी से जुड़ी एक खबर छापी है कि दिल्ली सरकार MCD और DDA कैसे अगस्त से अक्टूबर के बीच एकदम जैसे सो रहे थे। अलग अलग आंकड़े जुटाए गए हैं। अखबार का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वालों को जनवरी से अगस्त तक जितने चालान दिए गए उसमें अगस्त और अक्टूबर के बीच बहुत ज़बरदस्त कमी आ गई थी। मानो कि दिल्ली सरकार MCD और DDA सब एकदम जैसे सुस्त पड़ गए थे। अब बात अमरीकी चुनाव की करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने एक तस्वीर प्रकाशित की है। पहले पन्ने पर अमरीकी झंडे के आगे हिलरी क्लिंटन की विशाल परछाई है। लिखा है, क्या वो कर पाएंगी। इसका संकेत यह है कि अमरीका के करीब 200 से ज़्यादा साल के इतिहास में एक भी महिला राष्ट्रपति नहीं बनी और ये इतिहास बदलने का मौका है अमेरिका के सामने।
यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अमेरिका में राष्ट्रपति पद की पहली महिला प्रत्याशी जो थी उनका नाम है शर्ली चिजम, और उनके जीवन पर उनके बारे में जानकारी देने वाला एक वीडियो BBC हिंदी के पहले पन्ने पर लगा हुआ है। श्रोता वहाँ आकर BBC हिंदी के पहले पन्ने पर आकर शर्ली चिजम के जीवन के बारे में और जानकारी ले सकते हैं।
जी, अमरीकी चुनाव पर हिंदुस्तान टाइम्स से बड़ी दिलचस्प खबर प्रकाशित की है कि अगर हिलरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनती हैं तो उनके पति और पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन क्या कहलाएंगे, क्योंकि अब तक सिर्फ पुरुष राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका में और उनकी पत्नियों को फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कहा जाता है। और वो पहले पूर्व राष्ट्रपति बन सकते हैं जो कि अपनी पत्नी जो कि राष्ट्रपति बनेंगी तो उनके साथ वो व्हाइट हाउस में वापसी करेंगे। वैसे आजकल अमरीका में प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को पोटस और फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को फ्लोटस कहने का चलन भी हम खबरों में देखते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स ने एक इस पर कार्टून भी प्रकाशित किया है। अब्राहम लिंकन का कैरिकेचर है, उनकी मशहूर हैट पर अमरीकी झंडा है और उनकी उंगलियों पर हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के मुखौटे अटके हुए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक खबर द हिंदू और तमाम अखबारों में है। द हिंदू ने लिखा है कि महात्मा गांधी के पोते कनु गांधी का सूरत में निधन हो गया है।
ये कनु गांधी वही थे जो एक महात्मा गांधी की हम तस्वीर देखते हैं कई जगहों पर, लाठी पकड़कर एक बच्चा आगे आगे दौड़ रहा है समंदर के किनारे पीछे पीछे महात्मा गांधी, ये वही कनु गांधी हैं।
जी, यही तस्वीर दैनिक भास्कर के पहले पन्ने पर छपी है और लिखा है कि एक 8 साल का बच्चा जो इसमें दिख रहा है वो 86 वर्षीय कनु गांधी है। उनका निधन जो है सूरत में हो गया है। वो पिछले कुछ महीनों से भारत लौट आए थे। वो अमेरिका में नासा में वैज्ञानिक हुआ करते थे और दिल्ली में भी वो वृद्धाश्रम में कुछ महीने रहे और उसके बाद वो सूरत चले गए। 22 अक्टूबर को उनकी तबीयत खराब हुई और वो अस्पताल में थे। द हिंदू की पहली हेडलाइन एक और है, भारत ने ब्रिटेन से 57 भगोड़ों को लौटाने को कहा है। इस सूची में उद्योगपति विजय माल्या हैं, क्रिश्चियन मिशेल हैं और कुछ सिख उग्रवादी नेताओं के नाम भी है। इसमें ललित मोदी भी हैं जो कि क्रिकेट से जुड़े हुए थे और आजकल वो ब्रिटेन में हैं। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा मे भारत के दौरे पर आई हुई हैं और कल उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी।
हालांकि ऐसा कोई भरोसा नहीं मिला है ब्रिटेन की तरफ से कि वो इन लोगों को भारत के हवाले करेगा।
भारत ने अपनी सूची सौंपती है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक और खबर है, गुजरात में जो आने वाले चुनाव हैं अगले साल विधानसभा के, उसे लेकर कि अगर पटेल नेता हार्दिक पटेल जिन्होंने काफ़ी वहां पे हंगामा किया था पिछले साल, दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और शराबबंदी के पक्ष में प्रचार कर रहे क्षेत्रीय ठाकुर सेना जो कि अन्य पिछड़ा वर्ग के नेता हैं अल्पेश ठाकुर, अगर वो सब हाथ मिला लें तो अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और हो सकता है कि सत्ता में वापसी करने में उसे काफ़ी मुश्किल आए।
और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला मौका होगा जब प्रधानमंत्री बन चुके हैं नरेंद्र मोदी, उनकी नेतृत्व के बिना विधानसभा का चुनाव
उन्हीं के राज्य में
हो
सकता है कि मुश्किल बढ़ जाए, क्योंकि पिछले दिनों अल्पेश ठाकुर ने एक शराबबंदी के लिए जो है एक कार्यक्रम किया था उसमें जिग्नेश मेवाणी पहुंचे थे और उनको हार्दिक पटेल ने भी काफी पुरजोर समर्थन दिया था।
आम आदमी पार्टी भी सेंध लगाने की कोशिश करती रही है।
जी, तो भाजपा के लिए आने वाले दिन गुजरात में कैसे होंगे ये देखने वाली बात है। कांग्रेस में भी कल कुछ अहम फैसले हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कांग्रेस ने कमांड राहुल गांधी को देने का रास्ता साफ कर दिया और इस साल के अंत तक वो अध्यक्ष बन सकते हैं। जनसत्ता ने एक कार्टून छापा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव नजर आ रहे हैं और उनके साथ हैं चुनाव स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर जो कि कांग्रेस के साथ हैं और अखिलेश उनसे कह रहे हैं कि आपको उसी तरह शेयरिंग करनी पड़ेगी जैसे कि मैं दूंगा, यानी कि वो अपनी साइकिल की सीट पर शेयरिंग की बात कर रहे हैं।
ये वही प्रशांत किशोर हैं जो कांग्रेस से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे।
जी, भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और वो नीतीश कुमार को भी चुनाव जितवा चुके हैं बिहार विधानसभा चुनाव में। और इसी से हिंदुस्तान टाइम्स में एक जो खबर छपी है वो ये है कि अखिलेश यादव और किशोर की मुलाकात के बाद ये अटकलें तेज़ हो गई हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी के महागठबंधन में शामिल हो सकती है, तो वहाँ भी चुनावी गर्मा गर्मी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका और यूरोप के 7 देशों में भारतीय दूतावास की वेबसाइट हैक करने की खबर हिंदुस्तान टाइम्स के पहले पन्ने पर देख रही हूं और सोमवार को कथित तौर पर pastebin.com नाम की एक वेबसाइट पर सारा डेटा लीक कर दिया गया और इसमें भारतीय दूतावास के अधिकारियों की जानकारी भी है।
बहुत शुक्रिया हरिता कांडपाल समाचार पत्रों की विस्तार से समीक्षा करने के लिए। और कार्यक्रम के समापन से पहले सुनेंगे खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। इंग्लैंड के खिलाफ 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में भारतीय टीम बुधवार से राजकोट के मैदान पर उतरने जा रही है। इस सीरीज की शुरुआत से पहले कई कयास लगाए जा रहे हैं। भारतीय टीम के पूर्व सदस्य वीवीएस लक्ष्मण ने सीरीज को लेकर भविष्यवाणी की है। लक्ष्मण का मानना है कि भारत इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जीत का प्रबल दावेदार है और वो इस सीरीज को 4-1 से जीतेगा।
मुझे लगता है भारतीय टीम 4-1 से ये सीरीज जीतेगी।
लक्ष्मण के भरोसे की बड़ी वजह भारतीय स्पिनर आर अश्विन और उनका हालिया प्रदर्शन है। अश्विन ने पिछले महीने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 27 विकेट हासिल किए थे। लक्ष्मण का कहना है कि इंग्लैंड के खिलाफ अश्विन का लक्ष्य सीरीज में 40 विकेट लेने पर होना चाहिए।
Ashwin will be looking close to 40 and I think he'll be disappointed if he doesn't get that because the way he is bowling.
Mujhe lagta hai ki is series mein Ashwin ki nazar kareeb 40 wicket lene par hogi. Jis tarah se wo gendbazi kar rahe hain achhi rhythm mein dikhai de rahe hain. Unki khasiyat ye hai ki wo apne pradarshan se kabhi santusht nahi hote. Stump ke bahar wo consistency se gendbazi kar rahe hain, apni gati mein parivartan kar rahe hain aur har ballebaz ke against ek game plan ke tahat utar rahe hain. Hame nirasha hogi agar wo is series mein chhaap nahi chhodte hain.
टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव का भी मानना है कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में स्पिनर्स की भूमिका निर्णायक होगी, फिर चाहे वो किसी भी टीम के हों।
I think you are playing in India. If you don't have a good spin attack, then nothing is going to work. You don't expect.
भारत में खेलते हुए अगर आपके पास अच्छे स्पिनर नहीं हैं, तो आप जीत नहीं सकते। आंकड़ों पर नजर डालें तो तेज गेंदबाज स्पिन ट्रैक पर 25-30 विकेट नहीं निकाल पाए हैं। अगर आप भारत आते हैं तो अच्छा स्पिन अटैक अनिवार्य है, इसके बिना आपकी टीम को संघर्ष करना पड़ेगा।
इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम का पिछला घरेलू रिकॉर्ड भुला देने वाला रहा है। इस टीम ने भारत को उसी के घर में साल 2011, 2012 और 2014 में लगातार 3 बार हराया है। हालांकि यही टीम बांग्लादेश के हाथों पिछला टेस्ट गंवा कर भारत पहुंची है। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
भारत में बजने वाले हैं सुबह के 7। कार्यक्रम के समापन का हो चला है वक्त और लेकिन कार्यक्रम के समापन से पहले विश्व समाचार एक बार फिर हरिता कांडपाल से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग शुरू होने में कुछ ही घंटे बचे हैं। राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन वोटरों को रिझाने के लिए आखिरी जोर आजमाइश में लगे। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पुलिस ने सिलसिलेवार सांप्रदायिक हत्याओं के लिए कई लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। इराकी सेना ने हमाम अल अलील शहर में सिरकटी लाशों की सामूहिक कब्र ढूंढने का दावा किया है। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टे ने अमेरिका से हजारों असॉल्ट राइफलें खरीदने के सौदे को रद्द कर दिया है। पाकिस्तान में पुरातत्वविदों का कहना है कि उत्तर पूर्वी पाकिस्तान में 9 साल पहले तालिबान के चरमपंथियों के हाथों तहस नहस हुई बुद्ध की प्राचीन प्रतिमा के चेहरे को दुरुस्त कर लिया गया है। ऑस्ट्रिया के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ऑस्ट्रिया और पड़ोसी देशों को प्रवासियों के मुद्दे पर यूरोपीय संघ और तुर्की के बीच हुए समझौते के टूटने के लिए तैयार रहना होगा। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मालकन मालकम टर्नबुल की सरकार को समलैंगिक शादियों को कानूनी वैधता देने के लिए जनमत संग्रह कराने के प्रस्ताव को झटका लगा है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाल रहे थे अजीत सारथी। एक घंटे के बाद, ठीक एक घंटे के बाद हम फिर हाजिर होंगे लेकर विश्व भारती। तब तक संदीप सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत।